आगे है जी आयत 27 से 34, रुकू नंबर 9, तकवा की ज़िंदगी गुजारना, और किस्सा है हाबील खाबील का, पहला कत्ल दुनिया में कैसे हुआ। वत्लु अलैहि नबअ बनी आदम बिल हक, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नज़र तो कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल ना हुई, तो कहने लगा मैं तुझे मार ही डालूँगा, यानी हसद आ गया दिल में। इसने कहा अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है, गो तू मेरे कत्ल के लिए हाथ उठाएगा यानी दस्तराजी करेगा, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। मैं तो अल्लाह परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुना अपने सर पर ले ले और दोस्तियों में शामिल हो जाए, जालिमों का यही बदला है। बस इसे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था, ताकि इसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा दे। वो कहने लगा हाय अफसोस कि मैं ऐसा करने से भी क्या गुजरा हो गया हूँ कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता, फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हो गया। इस वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को बग़ैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया कि उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी की जान बचाए इसने गोया तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। और इनके पास हमारे बहुत से रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर इसके साथ भी इनमें से अक्सर लोग ज़मीन में ज़ुल्म व ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले ही रहे। कितनी सच्ची बात है, कत्ल इस कौम के साथ जुड़ा हुआ है। पहले अम्बिया का कत्ल था, फिर हम लोगों का कत्ल हुआ। आपने मैंने इसमें से अमल के क्या नुक्ते लिए ताकि अल्लाह की रज़ा पाएँ? पहली बात, अल्लाह का खौफ रखना, इंसानी जान का एहतराम करना, ज़मीन में फसाद नहीं करना, अल्लाह की खातिर कुर्बानियाँ देना, नदामत और तौबा वाली ज़िंदगी बसर करनी है और जुल्म नहीं करना। फिर इसके बाद रुकू अगला है आयत 35 से 43, अल्लाह का कुर्ब हासिल कैसे किया जाए, वसीले की हकीकत है यहाँ। कुछ लोग कहते हैं वसीला नहीं है, आइए देखते हैं कि वसीला क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, मुसलमानों अल्लाह से डरते रहो और इसका कुर्ब हासिल करो और इसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। यकीन मानो कि कुफार के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी ज़मीन में है, बल्कि इसकी मिसल और भी हो, वो सबको क़्यामत के दिन के अजाब के बदले फ़िदिये में देना चाहें तो भी नामुमकिन है कि इनका फ़िदिया कबूल कर लिया जाए। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, ये चाहेंगे कि वो दोज़ख में से निकल जाएं, लेकिन वो हरगिज़ इसमें से निकल ना सकेंगे, इनके लिए हमेशा का अजाब है। अल्लाह सबको बचा दे। आगे चोरी की सज़ा, चोरी करने वाले मर्द और औरत का हाथ काट दिया करो, ये बदला है इसका जो उन्होंने किया, अजाब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला मेहरबानी करने वाला है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ही के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल आप इन लोगों के पीछे ना कुड़िए जो कुफर में सबकत कर रहे हैं, ख्वाह इन मुनाफिकों में से हों जो ज़ुबानी तो दावा ईमान का करते हैं लेकिन हकीकतन इनके दिल ईमान वाले नहीं। ज़रा सा हम अपने दिलों को पूछें, क्या हम भी कुड़ते हैं? किसके दिल में कुड़न आती है लोगों की बेदीनी को देखकर, जिसकी अपनी हिदायत पूरी हो रही होती है? एक जुमला लिख लें, दूसरों की हिदायत की फ़िक्र ना होना इस बात की दलील है कि अभी अपनी हिदायत भी पूरी नहीं है। तो तड़पिए और तड़पाइए, यही दो काम कर जाइए, इंशाल्लाह अल्लाह हमारा नाम इस दौर के कुड़ने तड़पने वालों में लिख ले। आप इस पे नहीं तड़पेंगे ना लोगों की बेदीनी पे, तो आपको किसी और चीज़ पे कुड़ना पड़ेगा, चाहे वो बच्चों के गम हो। और एक बहुत प्यारा टॉपिक दिया था एक किसी दर्स में, याद आ गया, कि जो अल्लाह के दीन का दर्द खींच लेता है ना, अल्लाह उसको औलाद का दर्द नहीं देता, अल्लाह उसको माल का घर का गम नहीं देता। फरिश्ते कह देते हैं अल्लाह ये तो पहले ही इतना दुखी है, इसको और दुख क्या देने हैं, इसलिए फिर अल्लाह इस रास्ते में आकर आपको दुनिया की गमों से और तकलीफ़ों से बेनियाज कर देता है, और अल्लाह आपको मुझे ऐसा ही कर दे। और यहूद में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं, और इन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलेमात के असली मौके को छोड़कर इन्हें बदल दिया करते हैं। कहते हैं कि अगर यही हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, और अगर ये हुक्म ना दिए जाओ तो अलग थलग रहना, और जिसका ख़राब करना अल्लाह को मंजूर हो तो आप इसके लिए खुदाई हिदायत में किसी चीज़ के मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला का इरादा इनके दिलों को पाक करने का नहीं। इनके लिए दुनिया में भी बड़ी जिल्लत और रुसवाई है, और आखरत में भी इनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। ये कान लगाकर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर के हराम खाने वाले हैं। क्या तारुफ है, अल्लाह अकबर। अगर ये तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, खो इनके आपस के फैसले करो, खो इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुंह फेरोगे तो भी ये तुमको हर किस कोई जरर ना पहुंचा सकेंगे, और अगर तुम फैसला करो तो इनमें अदल इंसाफ के साथ फैसला करो। यकीन है अदल करने वालों के साथ अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करे और हमें अदल की तौफीक दे। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तौरात होते हुए, जिसमें अहकाम इलाही है, तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले है ही नहीं। क्या पता चला कि इस हिस्से में हमने आदम के दो बेटों का किस्सा पढ़ा। दो सुलभी भाई थे, सगे भाई थे, और आपस में किसी बात पे हसद आ गया। एक ने दूसरे से हसद किया, उसको मार दिया। खुद ही नहीं पता मैयत को दफनाएं कैसे। अल्लाह ने परिंदे के ज़रिए से सिखाया कि कैसे दफनाया जाता है। पता क्या चला कि इंसान को जब तक अल्लाह कुछ ना बताए, उसको जानवरों जितना इल्म भी नहीं है। फिर इसमें हसद और बुग़ज़ से ममानियत है, इंसानी जान की हुरमत है। फसाद करने वालों को सज़ा क्या मिलेगी, उसका तस्करा। और तकवा कुर्बत इलाही की बुनियाद है, यानी वसीला क्या है, तकवा। जितना अल्लाह का कुर्ब पाते जाएंगे उतना इंशाल्लाह अल्लाह आपके दूसरे काम आसान करता जाएगा। और फिर जुर्म और सज़ाएं और उसके अहकाम पड़े। आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते, अल्लाह की रज़ा पाने वाले, वसीले की हकीकत को समझना है। इन आयतों की इन डेप्थ तफसीर ले लीजिए तो इंशाल्लाह आपको 7-8 किस्म के वसीले मिलेंगे उसमें, कि किस किस चीज़ का वसीला बनाया जा सकता है। फिर अल्लाह की राह में कोशिश करनी है, बोलिए इंशाल्लाह। अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया इख्तियार करना है, इंसाफ करना है, अपनी इसलाह करनी है और तौबा करनी है, और अल्लाह हमें सब की तौफीक अता फरमाए। आगे है जी आयत 44 से 50, भलाइयों में सबकत ले जाना, ये टॉपिक है इस रुकू का। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर है। यहूदियों में इस तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले अम्बिया अलैहिस्सलाम और अहलुल्लाह और उलमा फैसला करते थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से ना डरो और सिर्फ मेरा डर रखो। मेरी आयतों को थोड़े से मोल से ना बेचो, और जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसले ना करें वो पूरे और पुख्ता काफिर। यहाँ गिनते जाइएगा, तौरात, इंजील और अब कुरान, तीनों किताबों का तस्करा 1-to-1 करके आ रहा है कि अगर इन किताबों में जो बातें हैं इसको अमली तौर पे नाफिज ना किया तो ऐसे लोग काफिर, फासिक और नाफरमान है। अल्लाह ताला हमें इस किताब को अपने सर से पांव तक और अपनी ज़िंदगी से बढ़कर पूरी इंसानियत पे नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। और हमने यहूदियों के ज़िम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और ख़ास ज़ख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स इसको माफ़ कर दे तो वो इसके लिए कफ़ारा है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक हुक्म ना करें तो वो ही लोग जालिम हैं। और हमने इनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने इन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी, और वह अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करती थी, और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी नेक लोगों के लिए। और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंजील में नाजिल फरमाया इसी के मुताबिक हुक्म करें, और जो अल्लाह के नाजिल करदा से हुक्म ना करें वो बदकार और फासिक हैं। अल्लाह ताला बार बार वार्निंग दे रहे हैं इन आयतों में। अल्लाह करे कि हम कम अज़ कम कुरान को नाफिज करने वाले बन जाएं। और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज है। इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक हुक्म कीजिए। इससे हटकर यानी इस हक से हटकर इनकी ख्वाहिशों के पीछे ना जाइए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर मंजूर इलाही होता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आजमाए। तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो। तुम सबका रुजू अल्लाह ही की तरफ है। फिर वो तुम्हें हर वो चीज़ बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहते थे। आप इनके मामलात में अल्लाह की नाजिल करदा वही के मुताबिक ही हुक्म किया कीजिए। इनकी ख्वाहिशों की ताबेदारी न कीजिए और इनसे होशियार रहिए कि कहीं ये आपको अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर ना करें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा ये है कि इन्हें इनके बास गुनाहों की सज़ा ही दे डाले, और अक्सर लोग नाफरमान होते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की सज़ा की बजाय हमें माफ़ कर दे। अफ हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? पक्की बात है। इस पे एक लेक्चर है, हमियत जाहिलिया, चार जाहिलियतें हैं कुरान में। आज बस इसका नंबर नोट कर लें, इंशाल्लाह जब चौथी पे पहुंचेंगे तो चारों का तकाबुल करवाऊंगी इंशाल्लाह। क्या पता चला? चोरी की हद पता चल गई, कसास के कुछ अहकामात पता चले, शरीयत नाफिज ना करने वाले फासिक हैं, और कुरान एक मुस्तकिल शरीयत है। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक दे। आपके मेरे लिए अमल की बातें, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए इस्लाम को अगर ज़ुबान से कबूल किया है तो दिल से भी करना है, किताब इलाही की हिफाजत करनी है और अल्लाह ताला से डरना है, भलाइयों में सबकत की कोशिश करनी है और कानून इलाही के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, और कुरान की हिदायत से नसीहत लेना है। अल्लाह हमें इसमें मदद दे। आगे बहुत ही खूबसूरत आयात है, 51 से 56, अल्लाह से मोहब्बत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें ख़तरा है ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह फ़तह दे दे या अपने पास से कोई और चीज़ लाए, तो फिर तो ये अपने दिलों में छिपाई हुई बातों पर बेतरहा नादिम होने लगेंगे और ईमानदार कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके आमाल गारत हुए और ये नाकाम हो गए। यदि मुसलमानों को बड़ा शौक है गैर मुस्लिमों में घुसने का, लेकिन उनको इनसे कोई ख़ास रग़बत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए। अब बिल्कुल इसके एक एक लफ्ज़ पे ना अपने आप को रखिए। ये है वो खूबसूरत आयत जिसको एक पलड़े में डाल दूँ और दूसरे पलड़े में सहाबाए कराम रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन कौन थे रख दूँ तो बिल्कुल बराबर है। यानी सहाबा बिल्कुल इस आयत के मुताबिक थे। सुनिएगा, ऐ ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफार पर। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी ना करेंगे। ये है अल्लाह का फजल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। दुआ करें अल्लाह हमें इस आयत के मुताबिक बना दे। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और इसका रसूल भी, और ईमान वाले हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और रुकू यानी खुशू और खुदू करने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला से और इसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे वो यकीन माने कि अल्लाह ताला की जमात ही गालिब रहेगी। तो आयत 51 सहाबा कराम का आईना था। सहाबा कराम कड़े इम्तिहानों में से गुजर गए, अपने बेहतरीन दोस्त यानी अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिए, दोस्तियाँ छोड़ दीं, दुश्मनियाँ पाल लीं। सहाबा कराम के लिए अल्लाह और इसके रसूल ही सब कुछ थे। आप पता है कि आज हमने जो खालिद बिन वलीद के बारे में पढ़ा, उनके बाप कौन थे? वलीद बिन मुगीरा। दिल दर्द से भर जाता है। अल्लाह ने इस शख्स का तस्करा कुरान में किया नाम लिए बगैर। कैसे इसने आकर अल्लाह के नबी की बात सुनकर फिर फेस एक्शन बनाए और किया? तीन बेटे थे, तीनों मुसलमान हो गए खालिद समेत, और बाप को ईमान नसीब ना हुआ। यह आयत आपको मुझे बताती है कि सहाबा के लिए अल्लाह और उसके रसूल सब कुछ हो गए थे, इसीलिए वो बचे। जब हमें वो सब हो जाएंगे तो हम भी बच जाएंगे। और यही आयतें जो फिट होती हैं अल्लामा इकबाल के उन अशार पे कि वो हल्का यारा तो बरे शम की तरह नरम, रस में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन। आपके मेरे लिए अल्लाह की रज़ा वाले बहुत सारे काम है इस रुकू में। नंबर एक, अहले ईमान के लिए नरम रवैया रखना है, मुनकरीन के लिए सख्त रवैया रखना है, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अल्लाह रसूल और अहले ईमान को दोस्त रखना है, अल्लाह के आगे झुकना है, और नमाज और ज़कात की पाबंदी करनी है। अगला रुकू है आयत 57 से 66, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो वरना नहीं बचोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीन, मुसलमानों इन लोगों को दोस्त न बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं, ख्वाब उनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफ्फार हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वह इसे एक हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वास्ते कि वो बेअक़ल लोग हैं, मजाक करते थे नमाज का और अज़ान का। आप कह दीजिए कि यहूदो नसारा, तुम हमसे सिर्फ इसलिए दुश्मनियाँ कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी तरफ नाजिल किया गया है और जो कुछ इससे पहले उतारा गया इस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में से अक्सर फासिक हैं। कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज़्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नज़दीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की और इस पर गुस्सा हुआ, और इनमें से बास को बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास्त से बहुत ज़्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए थे और इसी कुफर के साथ चले गए। अल्लाह ना करे कि प्यासे जाएं कुएं के पास से, कुरान के पास आए हैं, दुआ करें अल्लाह में हिदायत देकर भेजे। और ये जो कुछ भी छुपा रहे हैं इसे अल्लाह खूब जानता है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर लोग गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म ज्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं वो नहायत बुरे काम हैं। और इन्हें इनके आबिदो आलिम झूठ बात के कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यों नहीं रोकते? नोट कीजिएगा, मजहबी तबके पे बराह रास्त तनकीद है। अहले किताब का जब जवाल शुरू हुआ था ना, तो आपस की बहसों में इतने पड़ गए, एक फिरका दूसरे फिरके पे तनकीद करने और मसलक और गिरोह परस्ती में ऐसा पड़ा कि आम लोगों को बुरे कामों से कोई नहीं रोक रहा। आज इस वक्त बिल्कुल बहुत हद तक हम मुसलमानों के साथ भी ये हो रहा है। आप देखिए कि जहाँ नेकियाँ फैल रही हैं ना, वहाँ गुनाह भी फैल रहे हैं। पहले रमज़ान में बेकारियात ख़त्म हो जाती थी, आज आप जाकर देखिए, मीम्स देखिए, ड्रामों के ट्रेलर्स देखिए, खानों की तरकीबें देखिए, कभी कभी खुद ब खुद आपके यूट्यूब पे कुछ चीज़ें कूद आएंगी, आप सोच में पड़ जाते हैं कि रमज़ान और ये चीज़ें। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। तो जब उलमा लोगों को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जगह और बातों में उलझा दें तो फिर यही होता है, इसलिए तनकीद है। फरमाया, बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, नऊज़ुबिल्लाह, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और इनके इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, तभी तो दो दो हाथ से लुटा रहे हमारे ऊपर। अल्लाह की रहमतें हैं, जितनी मर्जी समेट लीजिए, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से उतारा चाहता है वो इनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफर में बढ़ा देता है, और हमने इनमें आपस में क्यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है। और जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर और फसाद मचाते फिरते हैं, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता, यानी इनकी सारी साजिशें खोल दी अल्लाह ने। और अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां माफ़ फरमा देते और ज़रूर इन्हें राहत और आराम की जन्नतों में ले जाते, और अगर ये लोग तौरात और इंजील और इनकी जानिब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है इसके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियानी रविश की है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के बुरे आमाल हैं। देखिए, जिसने पैदा किया होता है ना उसको पता होता है। कहते हैं ना, माँ को अपने बच्चे का पता होता है, अल्लाह को अपने बंदों का पता होता है कौन कैसा है। तो खुलासा क्या निकला इन आयात का? दुश्मन इस्लाम से दोस्ती मना है। अल्लाह के महबूब बंदों की सिफात हमने देखी, कुव्वत इस्लाम और मुर्तदीन का रवैया देखा, और अजान का मजाक उड़ाने वालों का हाल देखा। आपने मैंने क्या करना है इन आयात को पढ़ के? मोमिनों को दोस्त बनाना है, किताबुल्लाह के निफाज की कोशिश करनी है, रास्त रवि इख्तियार करनी है, सरकशी और बातिल परस्ती से बचना है, हराम माल से बचना है, और दीन को मजाक नहीं बनाना। अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आगे है जी आयत 67 से 77, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। आप नोट करें आज के बारे में इब्लाग की कितनी बात है, यानी अब दिन ब दिन इस बात की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि जो बात हमें पता है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रिसालत नहीं की, यानी रिसालत का हक अदा नहीं किया, और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए कि अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है कायम ना करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतरा है वो इनमें से बहुत सारों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ाएगा ही, तो आप इन कुफार पर गमगीन ना हो। अल्लाह नहीं चाहते कि नबी का दिल इनकी हालत पे कोड़े। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी कोई भी हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो महज बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम हो जाएगा। अल्लाह हमें भी बेगम कर दे। अल्लाह आप सब के भी गम, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर कर दे। हमने बिल यकीन बनु इसराइल से अहदों पे मान लिया और इनकी तरफ रसूलों को भेजा। जब कभी रसूल इनके पास वह काम लेकर आए जो इनकी अपने मनशा के ख़िलाफ़ थे, यानी जिस पर इनका दिल नहीं चाहता था, तो उन्होंने इनकी एक जमात को छुटलाया और एक जमात को कत्ल कर दिया और समझ बैठे कि कोई पकड़ना होगी, पसंदे बहरे बन बैठे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की और इसके बाद भी इनमें से अक्सर अंधे बहरे हो गए। अल्लाह ताला इनके अमाल को बखूबी जानता है। देखिए, अल्लाह किसी कौम को ऐसे ही नहीं पकड़ता। कितना गुस्सा लगता है अल्लाह ताला के इन आयात पे, और बार बार माफ़ किया फिर गलत काम करता है इंसान। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने इनसे कहा था कि बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सब करब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी, इसका ठिकाना जहन्नुम ही है, और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई न होगा। वो लोग भी कतन काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। ट्रिनिटी पे तनकीद है इधर, तसलीस। दरअसल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बास ना रहे तो इनमें से अक्सर जो कुफर पर रहेंगे इन्हें अलमनाक अजाब ज़रूर पहुँचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तग़फ़ार नहीं करते? अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। कितनी मोहब्बत है अल्लाह को अपने बंदों से कि किसी तरह ये आग से बच जाए। मसीह ने मरियम सिवा पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं जिनकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी, दोनों माँ बेटा खाना खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, और फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिरे जाते हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक हैं ना किसी नफ़े के? अल्लाह ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए कि अहले किताब, अपने दीन में नाहक गलू और ज्यादती न करो, और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुत सारों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं। क्या पता चला आयत 51 से 69 में कि बदतरीन गिरोह का अंजाम बदतरीन होगा? नबी सल्लम ने अल्लाह के किसी हुक्म को नहीं छुपाया। अल्लाह हमें भी छुपाने वालों में न बनाए। اور اللہ تعالیٰ کو بخیل کہنے والے خود بخیل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پہلی شرط ہے اعمال کی قبولیت کی. آپ کے میرے لیے عمل کی باتیں، اللہ کے کلام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہے، ایمان لا کر نیک عمل کرنا ہے، اور دین الہی کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے، گمراہ کن خیالات سے بچنا ہے اور توبہ کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری رکوع ہے پارے کا 78 سے 82. نافرمانی کی روش سے بچنا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کفار پر عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کفار سے دوستیاں کرتے ہیں. کم از کم تیسری بار یہ ٹاپک آیا ہے اس بارے میں. اسی لیے تو آج ہم اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں نا. اولادوں کا تو کیا نام لینا، ابھی تو ہم خود بھی اپنے ہاتھوں پریشان ہیں. اللہ ہماری اصلاح کر دے. جو کچھ بھی انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود کو اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اچھی بات جس کی بھی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، چاہے وہ یہود کی ہے یا نصارہ کی ہے یا مسلمان کی ہے. تو آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ اہل کتاب کی بدہدی کا تذکرہ، مشرک پر جنت حرام ہے، خواہش نفس کی پیروی سے روکا گیا، پیغمبروں کی زبان سے ان لوگوں پہ لعنت کی گئی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، اور اہل ایمان کے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں. آپ کے میرے لیے عمل کی باتیں، اللہ اور رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تکبر نہیں کرنا، مومنین کو رفیق بنانا، اللہ کی عبادت کرنا اور علم حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. چھٹے پارے کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین رہنمائی کی، اور علم میں پختگی پیدا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم بھی ہے. اور محاسبہ کرتے وقت حضرت عمر کا وہ قول یاد رکھیے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کوئی اور کرے. تو پوچھئے کیا میرا شمار کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے کہ ناکام، کیا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہوگا کہ نہیں، کیا میں نے دین میں ناحق غلوف تو نہیں کیا، کیا میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں، اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں. اللہ آپ کی میری اصلاح فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.